नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शक्ति सिंह। एक बार हम फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। आज कार्यक्रम में बात की जाएगी बैडमिंटन कोर्ट की, जहां चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा तथा चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी पहुंच गई है प्री क्वार्टर फाइनल राउंड में। महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप में कल भारतीय टीम करेगी थाईलैंड का मुकाबला। वहीं क्रिकेट की एक और घरेलू टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी में फाइनल की हो गई है तस्वीर साफ। साउथ जोन बनी है फाइनल में पहुंचने वाली टीम। और स्क्वाश में अनाहत सिंह लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे राउंड में पहुंची हैं, उनके साथ रवि टंडन ने भी बनाई दूसरे दौर में जगह। और भारत में पहली बार आयोजित होगी वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026, अहमदाबाद करेगा इस आयोजन की मेजबानी। कार्यक्रम को शुरू किया जाए आज बैडमिंटन की दुनिया की खबरों के साथ, जहां चीन मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला साबित हुआ। आज खेले गए मुकाबलों में किदांबी श्रीकांत पुरुष और तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई, जबकि लक्ष्य सेन और देविका सिहा को हार का सामना करना पड़ा। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी भी दूसरे दौर में पहुंच गई है। सुनते हैं आज खेले गए मुकाबलों का पूरा हाल।
किदांबी श्रीकांत ने ताइपे के ची यू चेन को हराया, वहीं लक्ष्य सेन को कनाडा के विक्टर लाई से हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स में स्वात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने मलेशिया के जुनैदी आरिफ और कान खाई जिंग को पराजित किया। वहीं देविका सिहाग को बुल्गारिया की कलायुआना नलतोआबा से हार का सामना करना पड़ा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो ने थाईलैंड की टोनरंग साहिंग और टोनकिद साहिंग को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। रोहन कपूर और ऋतिका शिहानी गड्डे की जोड़ी को ताइपे की सुवांग चुंग और ली चिया सिन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
और अब आज के खेल खबरों पे हमारे साथ अधिक चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला। विशेष, आप लगातार इस टूर्नामेंट पे नजर रख रहे हैं, आज की अगर मैचों की बात की जाए तो हर कैटेगरी में एक जीत और एक हार, प्री क्वार्टर फाइनल की तस्वीर साफ है। अब कल ये भारतीय खिलाड़ी अपनी अपनी कैटेगरी में किन खिलाड़ियों के खिलाफ उतरेंगे?
शक्ति, अगर पुरुष सिंगल्स की बात करेंगे तो किदांबी श्रीकांत कल विक्टर लाई, कनाडा के विक्टर लाई का सामना करेंगे, जिन्होंने आज लक्ष्य सेन को हराया है। अगर महिला सिंगल्स की बात करें तो तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान की तुमोका मियाजाकी से होगा। वहीं डबल्स की जोड़ी में अगर बात करें तो सात्विक चिराग जो है फ्रांस के क्रिस्टो और टोमा जूनियर पोपोव से खेलते नजर आएंगे। वहीं मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो जो है चीनी ताइपे की जोड़ी का सामना करते दिखेंगे।
जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कल के मुकाबलों की तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है और भारतीय खिलाड़ियों की नजरें होंगी कि जो भी इस प्रतियोगिता में बचे हुए हैं वो कितना आगे तक का सफर तय करते हैं, क्योंकि एशियन गेम्स से ठीक पहले आयोजित हो रहा ये टूर्नामेंट कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों के मनोबल में काफी कुछ जोड़ने का काम करेगा। बैडमिंटन के बाद अब स्क्वाश की बात, जहां भारत की अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे राउंड में जगह बना ली है। मौजूदा वर्ल्ड जूनियर चैंपियन अनाहत ने महिला सिंगल्स के अपने पहले मैच में मिस्र की मरियम मेटवाली को 11-3, 11-2 से हराया। पुरुष सिंगल्स के पहले राउंड में भारत के रमित टंडन ने कतर के अब्दुल्ला अल्तमीमी को 11-6, 11-7 से पराजित किया। हालांकि वीर चोटरानी को स्विट्जरलैंड के यानिक विलहेमी से 9-11, 9-11 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि दुर्भाग्यशाली रहे वीर चोटरानी और एक कड़े मुकाबले में जहां पे वो आखिरी तक टक्कर देते हुए दिखे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। और अनाहत सिंह, जिस तरह का उनका जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का दौर गया है, उसी फॉर्म के साथ उतरी और वापस मिस्र की एक खिलाड़ी जो कह सकते हैं काफी हद तक अब अनाहत की फेवरेट बनते जा रही है, इस मुकाबले में भी एक मिस्र की खिलाड़ी को अनाहत से हार का सामना करना पड़ा। अब बात क्रिकेट के मैदान की, जहां थाईलैंड में शानदार जीत के बाद महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप की शानदार शुरुआत करने के बाद भारतीय महिला टीम कल हांगकांग के खिलाफ अपना दूसरा मुकाबला खेलेगी। हरमनप्रीत की कप्तानी वाली भारतीय टीम की नजर शनिवार को पाकिस्तान से पहले होने वाले इस मैच में अपनी तैयारी को पूरी तरीके से पुख्ता करने पर होगी। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
पहले मैच में थाईलैंड पर मिली शानदार 94 रन से जीत के बाद भारतीय महिला टीम के हौसले बुलंद है। भारत को हांगकांग के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन टीम की नज़र इस मुकाबले में अपने पहले मैच की गलतियों को सुधारने पर रहेगी। टीम सबसे अधिक काम बल्लेबाजी के मोर्चे पर करना चाहेगी, जिसने पिछले मैच में एक वक्त में भारत के लिए चिंता की स्थितियां उत्पन्न कर दी थी। पहले मैच में शिफाली वर्मा ने 64 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया। शानदार शुरुआत के बाद भी एक समय पर 200 का स्कोर पार करती दिख रही हरमनप्रीत की टीम 159 रन भी बना सकी। तेज और अच्छी शुरुआत के बाद टीम का मध्य और निचला मध्य क्रम बल्ले से कमाल नहीं कर सका। हालांकि दीप्ति शर्मा की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने आसानी से जीत हासिल कर ली थी। दूसरी ओर हांगकांग को टूर्नामेंट के पहले मैच में थाईलैंड से 6 रन से हार का सामना करना पड़ा था। हांगकांग ने 121 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 7 विकेट पर 114 रन बनाए। ऐसे में टीम की नज़र यहां पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर होगी। एक दिवसीय प्रारूप में 4 और T20 प्रारूप में 3 एशिया कप खिताब जीतने वाली भारतीय टीम एशियाई खेलों जैसे अहम टूर्नामेंट से पहले अपने बेस्ट फॉर्म हासिल करना चाहेगी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
तो हरमनप्रीत एंड कंपनी की नजर होगी कि पाकिस्तान के मुकाबले से पहले जीत दर्ज की जाए, टीम का मनोबल बढ़ाया जाए और किन क्षेत्रों में टीम को अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी, ये मैच कितना अहम होगा। विशेष
भारतीय टीम को अपनी बल्लेबाजी पर खासा काम करना होगा और भारतीय टीम इस मुकाबले को एक वार्म अप मैच की तरह देखेगी पाकिस्तान के मुकाबले से पहले और अपना विजयी अभियान जो है उसको जो जारी रखना चाहेगी। हालांकि बल्लेबाजी में पिछले मुकाबले में इनसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जहां भारत एक समय पर 91 रन पर केवल 2 विकेट के नुकसान पर था और फिर उसके बाद 137 रन तक पहुंचते पहुंचते भारत ने अपने 9 विकेट गंवा दिए थे, यानी 46 रन के अंतराल में 7 विकेट। तो ये एक बहुत बड़ी कमी को दिखाता है, लेकिन भारतीय टीम इस मुकाबले में उन कमियों को पूरा करके अपने अगले पड़ाव की ओर ध्यान देगी।
जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा अभियान आगे प्रतीक्षा कर रहा है जहां पे टीम एशियन गेम्स खेलेगी 3 से 4 महीने बाद जर्मनी में। टीम को जनवरी के महीने में पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित की जा रही है आईसीसी की तरफ से, वो भी खेलनी होगी। तो टीम की नज़र इन बड़े टूर्नामेंट में खुद को तैयार करने पे होगी। पहले मैच का जिक्र हुआ यहां पर, जहां भारतीय टीम एक शानदार सदी हुई और तेज शुरुआत के बाद काफी हद तक बल्लेबाजी क्रम में थोड़ी सी बिखरती हुई नजर आई। टीम किस कॉम्बिनेशन और माइंडसेट के साथ आने वाले मैचों की और टूर्नामेंट की तैयारी करेगी।
शक्ति, ओपनिंग में जहां तक देखा जाए शिफाली वर्मा शानदार फॉर्म में हैं, उन्होंने पिछले मुकाबले में 36 गेंद पर 64 रन बनाए और उनके साथ जो बल्लेबाजी करने के लिए उतरती हैं स्मृति मंधाना, वो उन्होंने भी अपनी बल्लेबाजी से बहुत कुछ प्रूफ कर दिया है। लेकिन अभी मिडिल ऑर्डर में प्रतिका रावल, भारती फूलमाली और ऋचा घोष जैसे बल्लेबाज जो टीम में मौजूद है, उनको अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देते हुए टीम को एक मजबूत स्थिति में लाना होगा। वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर का जो खराब फॉर्म है वो एक चिंता का विषय है, लेकिन इसके अलावा भारतीय बल्लेबाज और गेंदबाज के साथ साथ ये टीम काफी सदी हुई नजर आ रही है। गेंदबाजी में जहां नंदिनी शर्मा, दीप्ति शर्मा, श्री चरनी और क्रांति गौड़ जैसी गेंदबाज भारत को मजबूती प्रदान करेंगी।
जी बिल्कुल, और आपने कप्तान का जिक्र किया, कप्तान हमेशा ऐसी स्थितियों में अपने बल्ले से, अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देती हैं और उम्मीद होगी कि हरमनप्रीत का बल्ला एक बार फिर एक बड़ी पारी के साथ इन तमाम सवालों का जवाब देता नजर आएगा। अब कार्यक्रम में बात की जाए दलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट की, जहां साउथ जोन ने फाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में साउथ जोन ने नॉर्थ जोन को 7 विकेट से हराया। कप्तान तिलक वर्मा ने पहले 116 रन और फिर 51 रन की शानदार पारी खेली।
साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से अपनी टीम को दलीप ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा दिया है। पहली पारी में नाबाद 116 रन बनाकर साउथ जोन को 117 रन की महत्वपूर्ण बढ़त दिलाने वाले तिलक ने दूसरी पारी में 51 रन बनाते हुए ईस्ट जोन के खिलाफ होने वाले फाइनल मुकाबले में टीम की जगह पक्की की। बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ग्राउंड 2 में खेले गए दलीप ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में नॉर्थ जोन की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 195 रन बना सकी। कामरान इकबाल ने सर्वाधिक 76 रन बनाए, जबकि साउथ जोन के लिए विद्वत कविरप्पा ने 4 विकेट झटके। इसके जवाब में साउथ जोन की टीम ने अपनी पहली पारी में तिलक वर्मा की 116 रन की नाबाद पारी की बदौलत 312 रन बनाए और 117 रन की बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद दोबारा बल्लेबाजी करने आई टीम सनद सांगवान के 76 और आयुष दोसेजा के 52 रन की बदौलत 297 रन बनाकर ऑल आउट हुई। हुई। इस पारी के हीरो रहे निधेश, जिन्होंने साउथ जोन के लिए 5 विकेट लिए। अंतिम पारी में 181 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ जोन ने कप्तान तिलक वर्मा के 51 रन की बदौलत आसानी से 7 विकेट से जीत हासिल कर ली। तिलक वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब 6 सितंबर से चेन्नई में साउथ जोन का सामना ईस्ट जोन से होगा। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
कल के कार्यक्रम में हमारा एक फाइनलिस्ट तैयार था और अब दूसरा भी तैयार हो चुका है। तस्वीर स्पष्ट है अगर आंकड़ों की नजर डाली जाए और अब तक का सफर इन दोनों टीमों का क्या कहानी बयां करते हैं ये आंकड़े।
शक्ति, अगर बात करी जाए साउथ जोन की, तो साउथ जोन जो है वो 13 बार खिताब को अपने नाम कर चुकी है और 2 बार उन्होंने ट्रॉफी शेयर भी की है। हालांकि उन्होंने पिछली बार फाइनल में सेंट्रल जोन के सामने उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार टीम का मनोबल काफी ऊपर है। वहीं अगर ईस्ट जोन को देखें तो उन्होंने अभी तक ट्रॉफी जो है सिर्फ 2 बार जीती है, 11-12 में और 12-13 में, तो दोनों बार उन्होंने लगातार ट्रॉफी जीती। इसके अलावा अगर बात करी जाए इन दोनों टीमों के आमने सामने रहने की, तो 1971 के बाद ये दोनों टीमें पहली बार फाइनल में आमने सामने होंगी। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों टीमें फाइनल में पहुंची हैं। मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने की उम्मीद है।
जी, और मुकाबले की आपने बात की, आज भी हमने देखा तिलक वर्मा के बल्ले से निकली थी टीम की जीत। फाइनल में कौन कौन से खिलाड़ी होंगे जिन पे सबसे अधिक नजरें रहेंगी?
अगर साउथ जोन की बात करें तो उनके कप्तान जो है वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, सबसे ज्यादा दारोमदार उन्हीं पर होगा। बल्लेबाजी में थोड़ी सी कमी नजर आती है, लेकिन जगदीशन और रिक्की भुई को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए टीम की बल्लेबाजी में योगदान देना होगा। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो निधेश, श्रेयस गोपाल, विठवत के वरप्पा जो है वो कमान संभालते दिखेंगे। अगर ईस्ट जोन में देखें तो वहां उनकी पूरा दारोमदार जो है गेंदबाजी पर है, जहां मुकेश कुमार, मोहम्मद शमी बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी उन्होंने पिछले मुकाबले में, जहां 7 और 6 विकेट चटकाए हैं। बल्लेबाजी में भी गहराई देखने को मिलती है, जहां अभिमन्यु ईश्वरन और वैभव सूर्यवंशी शानदार फॉर्म में हैं और कप्तान ईशान किशन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और निभाते नजर भी आएंगे।
जी बिल्कुल, और वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकली थी 92 रन की पारी, जिसने टीम को जिताने का और फाइनल तक स्टेज सेट करने का काम किया था। तो उम्मीद होगी कि फाइनल में भी ऐसी कुछ बड़ी पारियां और बड़े सितारे देखने को मिलेंगे। भारत के ध्रुव सितवाला को कनाडा के विनपेग में आयोजित पैन एम कप बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के फाइनल में सिंगापुर के पीटर गिलक्रिस्ट से 972 के मुकाबले 1500 अंकों से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मौजूदा एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियन सितवाल ने फाइनल की एक अच्छी शुरुआत की थी, हालांकि इसके बाद वो अपनी बढ़त को बरकरार नहीं रख सके। एक वक्त पे जो बढ़त 450 की थी वो गिलक्रिस्ट के सामने फिसलते फिसलते आखिरी में 972 और 1500 के स्कोर पे आके सिमटी। हालांकि इस एशियाई चैंपियन खिलाड़ी को आखिरी में रजत पदक के साथ संतोष करना पड़ा। और युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्रालय ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स की घोषणा कर दी है। इन पुरस्कारों में 4 श्रेणियां, लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर और लाइफ टाइम अचीवमेंट शामिल है। बलजीत कौर को लैंड एडवेंचर श्रेणी में, जबकि स्कलजांग रिंगजिंग को भी लैंड एडवेंचर की श्रेणी में, रिमो साह को वाटर और शिवप्रसाद चमोल को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए चयनित किया गया है। पुरस्कार विजेताओं को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में खेल पुरस्कार 2025 के साथ ही सम्मानित किया जाएगा। हालांकि पुरस्कार समारोह की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। तो एक और पुरस्कार जो खिलाड़ियों को एडवेंचर स्पोर्टिंग के क्षेत्र में दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं, उनकी घोषणा कर दी गई है। और इसी के साथ भारत लगातार खेल के क्षेत्र में नई मेजबानी के कीर्तिमान भी स्थापित कर रहा है। भारत में अब पहली बार आयोजित होने वाली वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 होगी। ये प्रतियोगिता अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट में 5 से 9 सितंबर तक आयोजित होगी। इन 5 दिनों के दौरान 20 देशों के 100 से अधिक खिलाड़ी निशाने साधते हुए नजर आएंगे। पदकों के लिए प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह 4 सितंबर को आयोजित होगा। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी की विशेष मौजूदगी रहेगी। और ये मेजबानी मिलने पर गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि हर तीर हिम्मत की कहानी कहता है और इस थीम पर आधारित ये उद्घाटन समारोह के लिए वो बेहद उत्साहित हैं। और जिस तरह से हमने देखा भी कि अहमदाबाद लगातार दावेदारी कर रहा है 2036 के ओलंपिक के लिए, एक पड़ाव 2030 में आना है जहां ये शहर जो है मेजबानी करेगा राष्ट्रमंडल खेलों के 100 वर्ष पूर्ण होने के विशेष मौके पर, तो कहा जा सकता है कि एक नया स्पोर्टिंग हब भारत को मिलता हुआ। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की तमाम खबरों के साथ। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें आप sportscan aair@gmail.com पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।